मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैंने कुछ दिनों पहले आप सबको कुछ प्रश्न दिए थे, और खासकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े हुए प्रश्न, इन पर हम लोग थोड़ी बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए, जो कुछ दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं वे मैं आप तक पहुंचा दूं। अभी 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण होगा, और हमारी ये परंपरा रही है कि जो 15 अगस्त का भाषण जो प्रधानमंत्री देते हैं वो लाल किले से देते हैं 15 अगस्त का भाषण। मैं चाहूंगा कि आप सब इस 15 अगस्त के भाषण को बहुत ध्यान से सुने, और अगर आप लाइव टेलीकास्ट सुन सकेंगे, देख सकेंगे, तो आपको और मजा आएगा, क्योंकि उसमें जीवंतता होती है ना। जब प्रधानमंत्री बोल रहे होंगे तो उनके भावों के उतार चढ़ाव, रुकने का अंदाज, बोलने का ढंग, जोश, उन सब का भी आप अनुभव कर सकेंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, देखिए, आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि जब मैं आपको ये बात कह रहा हूं तो आपको लगे कि हमने तो पिछले साल के इतने क्वेश्चंस देखे हैं, कभी नहीं पूछा गया कि इस बार के 15 अगस्त में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, क्या क्या उनके मुख्य बिंदु थे, या उनका मूल्यांकन कीजिए। तो सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सामान्यतः मैंने देखा कि जब मैं सिविल सर्विस के स्टूडेंट से बात करता हूं ना किसी टॉपिक पर, ये तो उनका दिमाग सीधे इस बात पर जाता है कि ये एग्जामिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा, इस बात पर नहीं जाता कि ये हमारे कुछ काम आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि जब हम आंसर राइटिंग करेंगे या प्री के जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें इससे कोई मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पर उनका दिमाग नहीं जाता। उनका दिमाग केवल यही सवाल करता है कि अरे यार, ये तो एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाना है तो फिर क्या फायदा। उस हिसाब से अगर आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही है कि कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप इस एंगल से मुझसे पूछेंगे कि मुझे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है और एक अच्छी तैयारी करनी है तो इससे क्या फायदा होगा, तो डेफिनेटली फिर मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री क्या है, अगर हमें कंपनी की भाषा में बात करें तो कंपनी के सर्वोसर्वा हैं, सीईओ हैं, चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो भी कह लीजिए। हमारे देश के कार्यकारी जो प्रमुख हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे कैबिनेट के प्रमुख हैं प्रधानमंत्री। तो अब वो 15 अगस्त के भाषण में जो बातें कहेंगे, आपको नहीं लगता है कि देश का कार्यकारी प्रमुख यदि कोई बातें कह रहा है तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए? क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं ना, तो आप सिविल सर्वेंट बनने के बाद करेंगे क्या? हम यही कहेंगे कि जो सरकार जो हमारी नीतियां बना रही है हम उन नीतियों को इम्प्लीमेंट करें, यही काम तो सिविल सर्वेंट का होता है। और परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा कि भाई हमारे देश की समस्याएं क्या हैं, उनके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, इन्हीं सब पर तो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री 15 अगस्त के भाषण में क्या बताते हैं, दो तीन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं। पहले तो डेफिनेटली वो बताएंगे कि हमारी क्या उपलब्धियां रही हैं, अपने देश की ताकत, अपने देश की क्षमता, शक्तियों के बारे में वो बताएंगे कि सरकार ने क्या क्या किया है। ये कोई प्रचार तंत्र का हिस्सा नहीं, आपको जानना चाहिए कि वाकई में हमारी सरकार ने क्या क्या किया है, आपको जानना चाहिए। फिर वो बताएंगे कि क्या क्या किए जाने की जरूरत है, अभी हमें किन चीजों की आवश्यकता है, किस तरह की नीतियां बनाई जानी चाहिए, ये भी आपको जानना चाहिए। फिर वो बताएंगे कि इसके लिए हम क्या क्या करने जा रहे हैं, कौन कौन से कदम उठा रहे हैं, ये भी आपको जानने चाहिए। कि आपको नहीं लगता कि इनको जानने के बाद प्री एग्जामिनेशन के चाहे क्वेश्चन हो या मेन्स के, उनमें आपको कितनी मदद मिलेगी? मदद मिलेगी। जो हमारे बंदरगाह होते हैं, बंदरगाह पर एक बहुत ऊंचा लाइट हाउस होता है ना, उसमें एक रोशनी निकलती रहती है। तो वो रोशनी निकलती है वो क्या करती है, जो स्टीमर आते हैं, जो बंदरगाह पर जिन जहाजों को पहुंचना होता है, उस रोशनी को देखते हैं और उससे उनको दिशा का ज्ञान होता है कि नहीं, हमें यहां पहुंचना है। देखिए, वो जो रोशनी है वो स्टीमर को खींच नहीं रही है अपनी तरफ, अट्रैक्ट नहीं कर रही, उसका कोई ऐसा फोर्स नहीं है कि वो उसे खींच सके, उसके रफ्तार को बढ़ा सके। वो उनका मार्गदर्शन कर रही है कि तुमको यहां आना, इस दिशा से तुम चल कर आओ। तो प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो आपको मार्गदर्शित करता है कि आप जिन टॉपिक्स पर तैयारी करेंगे वो टॉपिक कौन कौन से हैं, किस तरीके के हो सकते हैं, किस तरह के होने चाहिए। तो एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए वो लाइट हाउस का काम करते हैं। तो दोस्तों, प्लीज डू दिस। आज मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड करने जा रहा हूं, डिजिटल ऋण का नियमन शीर्षक से। डिजिटल ऋण, इसे आप पढ़िएगा। मैं समझ सकता हूं कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत महसूस करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार तो आप इसे जरूर पढ़िएगा, हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आप इससे निकाल सकें। जब हम कहते हैं डिजिटल डेट, डिजिटल ऋण। तो डिजिटल ऋण क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल सा, अभी आप बैंकों से ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो बैंक में जाते हैं आप, अप्लाई करते हैं, फिर बैंक वाले आपके यहां आते हैं, मुआयना लेते हैं कि आपकी संपत्ति कितनी है, सब पूछते पाछते हैं, फॉर्म वार्म भरवाते हैं, और फिर आपको बैंक ऋण देता है। ठीक है, तो ये सब के सब पर्सनल लेवल पर होते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर होते हैं। अब ये जो ऋण है, सीधी सी बात है कि इसमें आप व्यक्ति को हटा दीजिए और डिजिटल को ले आइए, बस डिजिटल तरीके से आपको ऋण मिल जाता है। देखिए जो ऋण देने वाली संस्थाएं हैं वो बैंक ही हैं, मतलब तीन तरह की संस्थाएं इसमें जब आप पढ़ेंगे एडिटोरियल कमेंट में तो आपको मिलेंगे कि एक तो ऋण देने वाली वे संस्थाएं हैं जिनका रेगुलेशन आरबीआई करती है, दूसरी वे संस्थाएं हैं जिनका आरबीआई तो नहीं करती है लेकिन वो बकायदे रेगुलेटेड होती हैं, और तीसरी संस्थाएं वे होती हैं जिनका ना आरबीआई करती है और न किसी अन्य तरीके से रेगुलेशन होता है, वो अपने ढंग से बस ऋण देती रहती है। तो जो डिजिटल ऋण है उसकी सिंपल सी परिभाषा या उसका परिचय यह हुआ कि आप डिजिटली अप्लाई कर देते हैं कि भाई मुझे ऋण चाहिए, उनका एक फार्म आता है, आप भर करके उसे जमा कर देते हैं और फिर बकायदे जो बैंक हैं उसे वेरीफाई कर लेते हैं, उनके पास अपने ऐप होते हैं, अपना इन आप यूं कह लीजिए डिजिटल के जो इंटेलिजेंस होता है वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपके बारे में सब पता लगा लेते हैं, आपकी संपत्ति क्या है, कितनी है, आपको इतना ऋण दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए, वो सब फटाफट पता लगा लेंगे, और अगर उनको लगा कि नहीं आपको दिया जा सकता है तो आपको ऋण दे देंगे, बात खत्म हो गई, फट से आपका काम हो जाएगा। और फिर मजेदार बात यह है कि जो आपको ऋण मिला उसका आप उपयोग कीजिए, अपने ढंग से उपयोग कीजिए, जो आप करना चाहें करिए। यह है डिजिटल ऋण। काम जल्दी हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, फट से हो जाता है, बहुत ज्यादा कागज वागज जमा नहीं करने पड़ते, थोड़े बहुत अगर जो मांगेंगे वो आप जमा कर दीजिए, बाकी काम वो डिजिटली खुद कर लेते हैं। जब मैं ये बातें आपको बता रहा हूं तो आप अब इमेजिन कीजिए कि इसको लेकर के किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दोनों को, बैंकों को भी, क्योंकि उसने ऋण दिया है तो उसकी वसूली भी होनी है, और जिसने ऋण लिया है उसके लेवल पर भी, क्योंकि जो डिजिटली देने वाली जो संस्थाएं हैं वो पता लगा कि पता नहीं किस किस तरह की शर्तें वो लिख रही हैं, कोई शर्तों को पढ़ता नहीं है, शर्तें भी बड़े छोटे छोटे अक्षरों में होती हैं, अगर पढ़ भी लिया तो कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर बाद में उसका फायदा उठाती हैं ना, गलत फायदा उठाती हैं, ऋण लेने वाला फंस जाता है, परेशान होने लगता है। बैंकों के लेवल पर यह है कि उनके बहुत से ऋण वापस नहीं आते तो उन्हें भी परेशानी होती है। तो अब सरकार ने बकायदे इसका नियमन करने के लिए कदम उठाए हैं, तो फर्स्ट स्टेज में उसने कुछ कदम उठाए हैं, इसमें आपको मिलेंगे, और सरकार ने कहा है कि आगे भी उसका जो सेकेंड स्टेज होगा उस पर भी वो अभी काम कर रही है। तो मुझे लगता है ये बहुत सरल ही, बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन आपकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए। एक मैं आपको आर्टिकल विराग गुप्ता जी का प्रोवाइड कर रहा हूं जो दैनिक भास्कर में छपा है, रेवड़ियां बांटने की संस्कृति की जड़ें कहां हैं। रेवड़ी संस्कृति पर हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं, कल का अगर आपने दूरदर्शन न्यूज सुना हो तो उसमें भी काफ़ी विस्तार के साथ रेवड़ी संस्कृति पर बात हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बकायदे इसको लेकर के सुनवाई जारी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन सजेस्ट जरूर करूंगा कि ये जो आर्टिकल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं प्लीज़ आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ने और समझने की कोशिश करें, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेहतर होगा कि आप नोट भी कर लें, मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से मुझे यह इस बार इंपॉर्टेंट मालूम पड़ रहा है। दोस्तों मैंने कुछ दिनों पहले आप सबको कुछ प्रश्न दिए थे और मैंने आप सबसे कहा था कि आप अपने लेवल पर उत्तर लिखने की कोशिश करें। देखिए जब मैं कहता हूं ना कि अपने लेवल पर उत्तर लिखने की कोशिश करें तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लिख करके मुझे भेजें, देखिए वो मेरे लिए संभव नहीं हो सकेगा, लेकिन मैं आपको होमवर्क जरूर दे देता हूं ताकि आपका दिमाग सोचने की आदत डाल सके। मैंने सिंपल सी बात आपसे कही थी कि जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं और हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं इनमें से कौन ज़्यादा लोकतांत्रिक है, क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव इसी पैटर्न पर होने चाहिए, अगर लोकसभा के स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव केवल राज्यसभा के ही मेंबर क्यों नहीं करते, उन्हीं को करना चाहिए, सीधी सी बात है, अगर लोकसभा के स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्य कर रहे हैं इसके पैरेलल राज्यसभा के सभापति का चुनाव, राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है, स्पीकर को अध्यक्ष कहा जाता है, तो वही करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा के जब सभापति के चुनाव की बात आती है तो आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य करते हैं, अब यह बात अलग है कि वो इनफैक्ट चुनाव राज्यसभा के सभापति का नहीं कर रहे होते, यहां ध्यान देने की बात है कि वे उपराष्ट्रपति का चुनाव कर रहे होते और चूंकि वो उपराष्ट्रपति हैं तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में भी काम करते हैं, यह व्यवस्था है। मुझे विश्वास है कि डेफिनेटली इस पर आप लोगों ने विचार किया होगा, सोचा होगा। इसके केंद्र में क्या है, ये जो मैंने आप सबसे प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा या इस प्रश्न के जो उत्तर बनेंगे उसकी जड़ कहां है। बीज होता है ना, एक बीज अगर आप बो देते हैं तो उसमें से फिर आप देखिए, आप कोई पत्ते थोड़ी बोए हैं, आप जड़ें भी नहीं बोए हैं, आप डाल भी नहीं बोए हैं, आप फल भी नहीं बोए, आप फूल भी नहीं बोए हैं, ऐसा सोच के नहीं, आपने एक बीज बो दिया और बीज जब निकला और बड़ा हुआ, पेड़ बना, तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजें अपने आप होती चली गई। हमारे अध्ययन की भी जो स्टाइल है वो यही होनी चाहिए। अध्ययन जब हम करते हैं तो बीज रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए, बीज रूप में। तो डेमोक्रेसी का बीज क्या है ये आपको समझना होगा। डेमोक्रेसी का जो बीज है वो ये है कि जब आप कोई भी निर्णय लेते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव करना, राष्ट्रपति का चुनाव करना एक निर्णय है, फैसला कर रहे हैं ना आप, तो उस निर्णय में कितने लोगों की भागीदारी है। जितने ज्यादा लोगों की भागीदारी होगी, सीधी सी बात है कि वह निर्णय उतना अधिक लोकतांत्रिक होगा। यह लोकतंत्र का बीज तत्व है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि फिर इस तरह के कोई भी प्रश्न पूछे जाएं, उनके आप उत्तर देने की स्थिति में बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। फिर आपका दिमाग काम करने लगता है ना, उसको सोचने के लिए फील्ड मिल जाता है, फील्डिंग मिल जाती है, अब इधर दौड़ेगा, उधर दौड़ेगा, इधर करेगा, और फिर वो आपके लिए चीजें लेकर आ जाता है। तो दोस्तों, आप इस एंगल से मेरे पूछे गए प्रश्नों पर विचार करें, आप देखेंगे कि यदि आप इससे पहले कुछ नहीं सोच पा रहे थे तो अब आप सोच लेंगे, और यदि ऐसा होता है तो आप मुझे लिखकर बताएं भी, मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हम लोग की जो ऑफलाइन क्लासेज हैं 7 से 21 अक्टूबर के बीच में होने वाली हैं, इसके लिए 3 नौजवान साथियों ने एडमिशन लिया है। इन साथियों के नाम हैं मनु बालियान, आपका गांव है रसूलपुर जतन, आप उत्तर प्रदेश से हैं, सुमित कुमार बांका बिहार से हैं, और सुभेश कुमार साहू आप रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। तो मनु, सुमित और सुभेश, आप तीनों नौजवान साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इनमें से 2 दोस्तों के नाम है कुंदन ठाकुर और प्रशांत सिंह, आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, अब आप सबसे 3 दिनों के बाद मुलाकात होगी। सोमवार को 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो इस स्वतंत्रता दिवस की आप सबको एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और मैं अपनी ओर से बहुत बहुत और बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब मुझे इजाजत दें, नमस्कार।